किस्सा कहानी बाय निधि बासु पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। ये स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आई हूँ मैं निधि बासु। इस पॉडकास्ट में सुनिए अपनी पसंदीदा हिंदी कहानियाँ केवल स्पॉटिफाई पर। मेरा पॉडकास्ट किस्सा कहानी बाय निधि बासु फॉलो करें और फॉलो के बगल में बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी हर नई कहानी आपको सबसे पहले सुनने को मिल जाए। जो कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी वो एक लव स्टोरी ट्रायंगल है। बांग्ला साहित्यकार और पूरे भारत के चहेते शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखी एक और खूबसूरत कहानी है आंधारे आलो। मुझे ये कहानी इसलिए इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि इसके जो किरदार हैं वो उनकी कहानी देवदास से कुछ मिलते जुलते हैं, पर इन किरदारों इन पात्रों की सोच थोड़ी हटके है। तो आज मैं निधि बासु आपको सुनाऊंगी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखी मूल बांग्ला कहानी का हिंदी अनुवाद अंधेरे में उजाला। बहुत दिनों की बात है, सत्येंद्र चौधरी जमींदार का लड़का बीए पास करके लौटा तो उसकी माँ बोली, लड़की साक्षात लक्ष्मी है, बेटा बात सुन, एक बार जाके देखा। नहीं माँ, अभी मुझसे किसी तरह ना होगा, इससे मैं पास नहीं हो पाऊंगा। क्यों नहीं हो सकेगा? बहू रहेगी मेरे पास, तू पढ़ेगा लिखेगा कलकत्ता में, पास होने में तुझे क्या बाधा होगी? मैं तो सोच ही नहीं पाती सत्तू। नहीं माँ, मुझसे नहीं होगा, अभी मेरे पास समय नहीं है, कहता कहता सत्य बाहर जाने लगा। जा मत, ठहर, अभी और बात है। मैंने वचन दिया है बेटा, मेरा मान नहीं रखेगा, सत्य लौट कर खड़ा हो असंतुष्ट होकर बोला। बिना पूछे वचन क्यों दिया माँ? लड़के की बात सुनकर माँ के हृदय को दुख हुआ। वो मुझसे अपराध हो गया, पर मुझे तो बात रखनी है ना, इसके अलावा विधवा की लड़की बहुत दुखी है। बात सुन सत्य, राजी हो जा। अच्छा फिर बताऊंगा, कहकर वो बाहर चला गया। माँ बहुत देर तक चुपचाप खड़ी सोचती रही, यही उनकी एकमात्र संतान है। 7-8 वर्ष हुए पति का स्वर्गवास हो गया, तब से विधवा स्वयं ही नायब गुमाश्ताओं की सहायता से बड़ी जमींदारी का शासन करती आ रही हैं। लड़का कलकत्ता रहकर कॉलेज में पढ़ता है, जमींदारी गृहस्थी का कोई समाचार भी उसे रोक नहीं पाता। माँ ने मन ही मन सोच रखा था, लड़के के वकालत पास कर लेने पर उसका विवाह करेगी और पुत्र और पुत्रवधू के हाथ में जमींदारी गृहस्थी का संपूर्ण भार देकर निश्चिंत हो जाएगी। इससे पहले लड़के को गृहस्थ बनाकर वे उसकी उच्च शिक्षा में बाधा नहीं बनेंगी। पर बात कुछ और ही बदल गई। पति की मृत्यु के बाद इस घर में इतने दिनों तक कोई काज कर्म नहीं हुआ। उस दिन किसी एक व्रत के उपलक्ष में सारे गांव को न्योता दे दिया। स्वर्गवासी अतुल मुखर्जी की दरिद्र विधवा अपनी बेटी को लेकर आई थी। वो लड़की उन्हें बहुत पसंद आई, केवल ये लड़की अत्यंत सुंदरी हो सो ही नहीं, इतनी सी उम्र में ही लड़की असाधारण रूप से गुणवती है, ये भी उन्होंने 2-4 बात करके ही समझ लिया था। माँ मन ही मन बोली, अच्छा पहले तो लड़की दिखाऊंगी, तब फिर कैसे पसंद नहीं होगी देखा जाएगा। दूसरे दिन दोपहर के समय सत्य भोजन करने के लिए माता के कमरे में घुसते ही स्तब्ध खड़ा रह गया। उसके खाने की जगह के ठीक सामने आसन बिछाकर माँ ने बैकुंठ की लक्ष्मी देवी को हीरा मुक्ताओं से सजाकर बिठा रखा था। माँ घर में घुसते ही बोली, खाने के लिए बैठ। सत्येंद्र जैसे सोते से जागा, यहाँ क्यों, और कहीं मुझे खाना परोस दो, तू सचमुच ही विवाह करने तो जा नहीं रहा है, इस छोटी सी लड़की के सामने तुझे लज्जा क्यों आती है? मैं किसी से लज्जा नहीं करता, कहकर सत्य पेज जैसा मुंह बनाकर सामने बिछे आसन पर बैठ गया। माँ चली गई, 2 मिनट के भीतर ही वो थोड़ा बहुत खाना मुंह में डालकर उठ गया। बाहर वाले कमरे में घुसते हुए देखा, मित्र लोग आ जुटे हैं और 64 छक्के डाले जा रहे हैं। उसने पहले से ही दृढ़ आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, मैं किसी तरह बैठ नहीं सकूंगा, मेरा सिर भारी हो रहा है, कहकर कमरे के एक कोने में सरक सिर को तकिए पे रखकर आंखें बंद करके सो गया। मित्रों को मन ही मन कुछ आश्चर्य हुआ एवं खेलने वालों की कमी होने के कारण चौसर उठाकर शतरंज बिछा ली। शाम तक बहुत हार जीत हुई, पर सत्य एक बार भी नहीं उठा, एक बार भी नहीं पूछा कौन हारा कौन जीता। आज ये सब उसे अच्छा ही नहीं लग रहा था। मित्रों के चले जाने पर वो मकान के अंदर पहुंचकर सीधा अपने ही कमरे को जा रहा था। रसोई घर के बरामदे से माँ ने पूछा, इस समय सोने जा रहा है रे?
सोने नहीं, पढ़ने जा रहा हूँ। एमए की पढ़ाई सरल नहीं है ना, समय नष्ट करने से कैसे चलेगा,
कहकर वो धम धम करता हुआ ऊपर चढ़ गया। आधा घंटा बीत गया, उसने एक भी लाइन नहीं पढ़ी। टेबल के ऊपर किताब खुली पड़ी थी। कुर्सी को हिलाता हुआ ऊपर की ओर मुंह किए वो छत की कड़ियों को गिन रहा था, तभी अचानक ध्यान भंग हो गया। उसने कान खड़े करते हुए सुना, फिर थोड़ी देर बाद सत्य ने सीधे उठकर बैठते हुए देखा, वही सिर से पांव तक गहने पहने हुए लक्ष्मी देवी जैसी लड़की धीरे धीरे पास आकर खड़ी हो गई। सत्य टकटकी लगाए देखता रहा।
माँ ने आपकी राय पूछी है।
किसकी माँ?
मेरी माँ।
सत्य उसी समय जवाब नहीं दे पाया, क्षण भर बाद बोला,
मेरी माँ से पूछते ही पता चल जाएगा।
लड़की लौटी जा रही थी, सत्य ने अचानक प्रश्न कर डाला,
तुम्हारा नाम क्या है?
मेरा नाम राधा रानी है।
किसी प्रकार राधा रानी का जबरदस्त ध्यान भुलाकर सत्य एमए पास करने के लिए कलकत्ता चला आया है। यूनिवर्सिटी के सारे एग्जाम्स को पास ना करने तक बिल्कुल भी नहीं, हो सकता है बाद में भी नहीं, वो विवाह ही नहीं करेगा। कारण, गृहस्थी में पड़ जाने से मनुष्य का आत्मसंभ्रम नष्ट हो जाता है, इत्यादि इत्यादि। तो भी रह रहकर उसका पूरा मन जैसे न जाने कैसा हो उठता है। कहीं भी कोई नारी मूर्ति देखते ही एक दूसरा छोटा सा मुख उसके सामने आकर उसको ढकता हुआ अकेला विराजमान हो उठता है। सत्य किसी भी प्रकार उस लक्ष्मी प्रतिमा को भूल नहीं पाता। हमेशा से ही वो नारी के प्रति विरक्त रहा है। अचानक ये उसे क्या हो गया है कि राह घाट में कहीं भी एक विशेष उम्र की किसी लड़की को देखते ही उसे अच्छी तरह देखने की इच्छा होती है। हजार कोशिश करने पर भी वो जैसे किसी प्रकार आंखें नहीं हटा पाता। देखते देखते अचानक शायद बहुत शर्मा कर उसका पूरा शरीर बार बार सिहर उठता है और वो उसी समय किसी भी एक रास्ते को पकड़कर बहुत जल्दी वहां से खिसक जाता है। सत्य को तैर कर स्नान करना बहुत अच्छा लगता था। उसके चोर बागान के निवास से गंगा नदी दूर नहीं है, अक्सर ही वो जगन्नाथ घाट पर स्नान करने के लिए आता। आज पूर्णिमा है, घाट पर बहुत भीड़ है। गंगा तट पर आकर वो जिस उड़िया ब्राह्मण को सूखे कपड़ों की जिम्मेदारी सौंपकर पानी में घुसता है, उसी की ओर चले आते हुए उसे जब एक जगह रुकना पड़ा तो देखा चार पांच लोग एक ओर देख रहे हैं। सत्य भी उस ओर देखते हुए आश्चर्य से ठहर गया। उसके मन को लगा, एक साथ इतना रूप उसने और कभी किसी स्त्री शरीर में नहीं देखा। लड़की की उम्र 18-19 रही होगी। पहनावे में सीधी सादी, काले पाड़ की धोती, पूरा शरीर आभूषणहीन, घुटनों के बल बैठी हुई, माथे पर चंदन की छाप लगवा रही थी और सत्य का परिचित पंडा स्थिर हाथों से सुंदरी के गाल और नाक पर चंदन की रेखा खींच रहा था। सत्य पास जाकर खड़ा हो गया। पंडा सत्य से भरपूर दक्षिणा पाया करता था, इसी से उसने रूपसी के चंद्रमुख की खातिरदारी त्याग के बड़े बाबू के सूखे कपड़े लेने के लिए हाथ बढ़ा दिया। दोनों की आंखें चार हुईं। सत्य झटपट कपड़ों को पंडे के हाथ में दे बहुत जल्दी सीढ़ियां पार करके पानी में घुस गया, मगर आज उससे लहरें नहीं काटी जा सकी। किसी प्रकार स्नान पूरा करके जब वो वस्त्र बदलने ऊपर आया तब तक वो असामान्य रूप सी चली गई थी। उस दिन उसका मन दिन भर गंगा गंगा करने लगा।
और दूसरे दिन अच्छी तरह सवेरा होने से पहले ही माँ गंगा ने उसे ऐसी जोर से खींचा कि वो विलंब ना करके खूंटी से एक जोड़ी कपड़ा खींच कर गंगा यात्रा को चल दिया। घाट पर आकर देखा, अपरिचिता सुंदरी अभी अभी स्नान करके ऊपर आई है और आज भी अपने माथे पर छापा लगवा रही है। आज भी चारों आंखें मिली, आज भी उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई और वो किसी प्रकार कपड़े छोड़कर जल्दी से स्नान करने चल दिया। वो प्रतिदिन बहुत अंधेरे ही गंगा स्नान करने आती है, सत्य ये जान गया। इतने दिन तक जो दोनों का आमना सामना नहीं हुआ, उसका एक ही कारण है। पहले सत्य स्वयं ही बहुत देर से स्नान करने आता था। गंगा तट के ऊपर ही ऊपर आज 7 दिनों से दोनों की 4 आंखें मिल रही हैं, पर मुंह से बात नहीं निकलती। शायद उसकी आवश्यकता भी नहीं थी। जिस जगह आंखों की बात होती है, उस जगह मुंह की बात को चुप ही रह जाना पड़ता है। वो अनजानी रूप सी जो भी हो, उसने आंखों से बात करते हुए बहुत कुछ सिखा दिया है और उस विद्या के पारखी सत्य के अंतर्मन ने भीतर हृदय में उसे अनुभव कर लिया है। उस दिन स्नान करके वो कुछ अनमना सा लौट रहा था, अचानक उसके कानों में पड़ा, एक बात सुनिए। मुंह उठाकर देखा, रेलवे लाइन के उस पार वही सुंदरी खड़ी हुई है। उसकी बाईं बगल में पानी से भरा छोटा सा पीतल का कलश और दाहिने हाथ में गीला कपड़ा है। उसने सिर झुकाकर इशारे से बुलाया। सत्य इधर उधर देखकर पास जाकर खड़ा हो गया। मेरी नौकरानी आज नहीं आई है, दया करके मुझे कुछ आगे तक पहुंचा दें तो बहुत अच्छा हो। और दिन वो दासी को साथ लेकर आती थी, आज अकेली है। सत्य का मन दुविधा में पड़ गया। ये काम अच्छा नहीं है, मन को एक बार ऐसा भी लगा, पर वो ना नहीं कर सका। रमणी उसके मन के भाव को समझकर कुछ हंस गई। इस हंसी को जो हंसना जानता है, वो संसार में सब कुछ पा सकता है। सत्य तुरंत ही चलिए कहकर उसके पीछे चलने लगा। 2-4 कदम आगे बढ़कर वो बोली, दासी बीमार है, वो आ नहीं सकती, पर मैं भी गंगा स्नान किए बिना नहीं रह सकती। आपको भी देखती हूँ, यही बुरी आदत है।
जी हाँ, मैं भी प्रायः गंगा स्नान करता हूँ।
यहाँ आप कहाँ रहते हैं?
चोर बागान में मेरा घर है।
मेरा मकान जोड़ा सांकू में है। आप मुझे पथरिया घाट के मोड़ तक पहुंचाकर बड़ी सड़क से चले जाइएगा।
ठीक है।
बहुत देर तक और कोई बात नहीं हुई। एक जगह आकर वो मुड़कर खड़ी होती हुई फिर वैसी ही हंसी हंसकर बोली,
पास ही हम लोगों का मकान है, अब चली जाऊंगी। नमस्कार।
नमस्कार कहकर सत्य गर्दन झुकाए झटपट चला गया। उस दिन भी उसकी छाती के भीतर न जाने क्या होता रहा, वो लिखकर बताना कठिन है। जवानी में कामदेव के पुष्प बाण का आघात जिन्हें सहना पड़ा है, केवल उन्हीं को अनुमान हो सकेगा। केवल वे ही समझ सकेंगे उस दिन क्या हुआ, सब लोग नहीं समझ सकेंगे। किस पागलपन के नशे में डूबकर जल, आकाश, वायु सब रंगीन दिखाई देने लगे। पूरा संसार किस तरह चेतना खो बैठा है और वो प्राणहीन चुंबक की तरह केवल इसी एक ओर झुका पड़ रहा है। दूसरे दिन सवेरे उठकर सत्य ने देखा धूप निकल आई है। एक दर्द की लहर उसके गले तक जम गई। उसे पक्का लग रहा था कि आज का दिन तो एकदम व्यर्थ हो गया है। नौकर सामने से जा रहा था, उसे बुरी तरह धमकाते हुए कहा, हरामजादे, इतनी देर हो गई, तू मुझे हिला भी नहीं सकता था, जा, तुझ पर 1 रुपया जुर्माना किया। वो बेचारा घबराया हुआ देखता रहा। सत्य दूसरा कपड़ा लिए बिना नाराज मुंह से घर से निकलकर बाहर चल दिया। सड़क पर आकर किराए की गाड़ी की और गाड़ीवान को पथरिया घाट के भीतर होकर चलने का हुक्म देकर रास्ते के दोनों ओर आंखें बिछा रखी। पर गंगा तट पर आकर घाट की ओर देखते ही उसका सारा गुस्सा जैसे ठंडा हो गया, बल्कि मन को लगा जैसे अचानक ही रास्ते पर पड़े हुए किसी अमूल्य रत्न को उठा लिया। गाड़ी से उतरते ही वो कोमलता पूर्वक ऐसे बोली जैसे बहुत जान पहचान हो।
इतनी देर क्यों? मैं आधे घंटे से खड़ी हूँ। जल्दी नहा लीजिए, आज भी मेरी दासी नहीं आई।
एक मिनट सब्र कीजिए, कहकर सत्य तुरंत जल में जा घुसा। तैरना उसका न जाने कहाँ गया। वो किसी प्रकार शरीर को 2-3 डुबकी देकर लौट आया।
मेरी गाड़ी कहाँ गई?
मैंने उसे भाड़ा देकर विदा कर दिया।
आपने भाड़ा दिया?
दे ही दिया, चलिए, कहकर वो आगे बढ़ चली।
सत्य एकदम मर गया कि चाहे ये निरीहता हो या अनाड़ीपन हो, एक बार में ही संदेह हो जाता है ये सब क्या है।
रास्ते में चलते चलते रमणी ने कहा, कहां घर बताया था? चोर बागान में।
हाँ,
वहां क्या केवल चोर ही रहते हैं?
क्यों?
आप तो उन चोरों के राजा हैं।
थोड़ा सा गर्दन घुमाकर कटाक्ष पूर्वक हंसती हुई वो फिर चुपचाप हंस की चाल से चलने लगी।
आज वो जो घड़ा पकड़े थी थोड़ा बड़ा था।
भीतर का गंगा जल छला छल शब्द से, अर्थात ओरे मुग्ध अंधे युवक, सावधान, ये सब धोखा है, सब ठगी है, कहकर उछल उछल कर बार बार व्यंग तिरस्कार करने लगा।
मोड़ के पास आने पर सत्य ने संकोच पूर्वक कहा, वो गाड़ी भाड़ा तो।
रमणी घूमकर उसके सामने खड़ी हो गई।
ये तो आपने ही दिया है।
सत्य ये इशारा नहीं समझा।
मैंने कैसे दिया?
मेरे पास और है क्या जो दूंगी? जो था वो सभी तो तुमने चोरी डकैती से ले लिया,
कहकर उसने दूसरी ओर मुंह फेर लिया, शायद अपनी हंसी को जबरदस्ती रोकने के लिए। इस अभिनय को सत्य नहीं देख पाया, पर सुंदरी के शब्दों में छिपे अर्थ ने जैसे आसमान में चमकती बिजली की तरह उसके संदेह के जाल को भीतर तक भेदते हुए छाती के अंदर तक रोशनी कर डाली। उसे क्षण भर को इच्छा हुई उन दोनों आलता लगे पांवों में लौट जाए, पर पलक मारते ही गंभीर शर्म से उसका माथा इस तरह झुक गया कि वो एक बार प्रियतमा के मुख की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सका। चुपचाप नीचा मुख किए धीरे धीरे वहां से चला गया। उसी फुटपाथ पर सुंदरी के आदेशानुसार दासी उसका इंतजार कर रही थी। पास आकर बोली,
अच्छा दीदी मोनी, बाबू को इस तरह क्यों नचाती फिरती हो? कहती हूँ कुछ है भी या नहीं?
दो पैसा खींच सकोगी ना?
सो नहीं जानती, पर बेवकूफ लोगों की नाक में रस्सी डालकर घुमाने में मुझे अच्छा लगता है।
ये भी तुम ही कर सकती हो, पर कुछ भी कहो दीदी मोनी, देखने में जैसे राजकुमार हैं, जैसी आंखें और मुंह है वैसा ही रंग। तुम दोनों ना सच मानो खड़े होकर बातें कर रहे थे तो ये लगता था जैसे गुलाब के दो फूल खिले हुए हों।
अच्छा चल, तो पसंद आ गया हो तो, ना हो तो तू ही ले लेना।
दासी भी हारने वाली नहीं थी, उसने जवाब दिया,
नहीं दीदी मोनी, वो वस्तु प्राण रहते किसी और को नहीं दे सकोगी, ये कहे देती हूँ।
ज्ञानियों ने कहा है, असंभव घटना आंखों से देखने पर भी कहनी नहीं चाहिए, कारण अज्ञानी लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। खैर कुछ भी हो, ये एकदम सच्ची बात है कि सत्य जैसे आदमी ने उस दिन घर लौटकर टेनिसन की कविताएं पढ़ी और डॉन खुआन की कविताओं का बांग्ला अनुवाद करने बैठ गया। वो इतना बड़ा हो चुका था, पर इतना सा भी संदेह उसके मन में नहीं उठा कि दिन के समय में शहरी राह घाट में ऐसे अद्भुत प्रेम की बाढ़ संभव भी हो सकती है या नहीं, या फिर उस बाढ़ का प्रवाह यदि सब कुछ डुबाता हुआ उठा तो वो सुरक्षित भी रह सकेगा या नहीं। 2 दिन बाद स्नान करके घर लौटते हुए रास्ते में शहर में चल रहे नाटक और फिर नॉवेल पर चर्चा होने लगी। सत्य ने आश्चर्य से उसको देखते हुए कहा,
तुम शायद बहुत पुस्तकें पढ़ती हो।
अंग्रेजी तो नहीं जानती, पर बांग्ला की जो भी किताबें निकलती हैं सबको पढ़ती हूँ, किसी किसी दिन सारी रात पढ़ती हूँ। यही तो बड़ी सड़क है, चलो ना हमारे घर, जितनी पुस्तकें हैं सब दिखाऊंगी।
सत्य चौंक उठा, तुम लोगों के घर?
हाँ हम लोगों के घर, चलो चलना ही होगा तुम्हें।
अचानक सत्य का मुंह पीला पड़ गया। नहीं नहीं नहीं, छी छी,
छी छी कुछ नहीं, चलो।
नहीं नहीं आज नहीं, आज रहने दो, कहकर सत्य कांपते हुए पांवों से वहां से तुरंत चल दिया। इस अनजानी प्रियतमा के लिए गंभीर श्रद्धा भाव से उसका हृदय भर गया। सवेरे स्नान करके सत्य धीरे धीरे घर लौटा। उसका चेहरा बुझा हुआ था, आंखों की पलकें उस समय भी गीली थीं। आज 4 दिन बीत गए, अपनी अनजानी प्रियतमा को वो देख नहीं पाया है। आज फिर वो गंगा स्नान करने नहीं आई। आकाश पाताल की न जाने क्या क्या बातें उसने कुछ दिनों से की हैं, उनकी सीमा नहीं। कभी कभी मन में दुश्चिंता भी हो उठी है, शायद वो बची ही ना हो, शायद वो मृत्युशैया पर, कौन जाने। वो गली तो जानता है पर और कुछ नहीं पहचानता। किसका मकान है, कहाँ मकान है, कुछ भी नहीं जानता। मन में सोच विचार आत्मग्लानी से हृदय जला जा रहा है कि उस दिन क्यों नहीं चला गया जब उसने इतना अनुरोध किया था। वो सचमुच ही मुझसे प्रेम करती थी, आंखों में नशा नहीं, हृदय में गहरी प्यास थी, उसमें छल कपट की छाया भी नहीं थी। जो थी वो सचमुच ही निस्वार्थ, सचमुच ही पवित्र, हार्दिक स्नेह था। बाबू, सत्य ने चौंक कर देखा। रमणी की वही दासी जो साथ आती थी सड़क के किनारे खड़ी हुई है। सत्य घबरा कर पास आकर बोला, क्या हुआ उन्हें? कहते ही उसकी आंखों में पानी आ गया, संभाल नहीं सका। दासी ने मुंह नीचा करके हंसी छुपा ली, शायद हंसी आ जाने के डर से ही मुंह नीचा किए हुए बोली, दीदी मोनी बहुत बीमार हैं, आपको देखना चाहती हैं। चलो, कहकर सत्य तुरंत आंखें पोंछकर उसके साथ चल दिया। चलते चलते पूछा, क्या बीमारी है, बहुत अधिक बढ़ गई है क्या?
नहीं, सो तो नहीं, पर बुखार बहुत है।
सत्य ने मन ही मन हाथ जोड़े और कुछ नहीं पूछा। मकान के सामने आकर देखा, बहुत बड़ा मकान है। दरवाजे के पास बैठा एक दरबान ऊंग रहा है। दासी से पूछा, मेरे जाने से तुम्हारी दीदी मोनी के पिता नाराज तो नहीं होंगे, वे मुझे नहीं पहचानते।
दीदी मोनी के पिता नहीं हैं, केवल माँ हैं। दीदी मोनी की तरह वे भी आपको बहुत प्यार करती हैं।
सत्य ने कुछ और ना कहकर भीतर प्रवेश किया। सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल के बरामदे में आकर देखा, पास ही पास कमरे हैं। बाहर से जितना भी दिखाई पड़ता है, लगता है वे सब चमत्कार पूर्ण ढंग से सजे हुए हैं। किसी कमरे से तबला, घुंघरू और हंसने की आवाज आ रही है। दासी ने हाथ से दिखाते हुए कहा,
यही कमरा है, चलिए।
दरवाजे के सामने आकर वो हाथ से पर्दे को हटाती हुई बहुत ऊंची आवाज में बोली,
दीदी मोनी ये लो अपने नागर को।
तेज हंसी और हल्ला उठा। भीतर जो कुछ देखा उससे सत्य का पूरा दिमाग उलट पुलट हो गया। उसे लगा जैसे वो अचानक बेहोश होता हुआ गिरा जा रहा है। किसी तरह दीवार को पकड़कर उसी जगह आंखें बंद करके वो चौखट के ऊपर बैठ गया। कमरे के भीतर तख्त बिछा था। गद्दी, चादर आदि के बिछौने के ऊपर 2-3 सभ्य वेशधारी पुरुष बैठे थे। एक आदमी हारमोनियम, एक तबला लिए बैठा था। एक और व्यक्ति धुत धोकर शराब पी रहा था। और वो शायद अकेली नाच रही थी। दोनों पांव में घुंघरू बंधे हुए थे। पूरा शरीर विविध प्रकार के आभूषणों से भूषित था और शराब में डूबी दोनों आंखें झूम झूम रही थीं। झटपट पास आकर सत्य का एक हाथ पकड़ खिलखिलाकर हंसती हुई बोली,
दोस्त को मिर्गी की बीमारी है क्या? लो भाई, इतना अभिनय मत करो, उठो, इन सब से मुझे बहुत डर लगता है।
बिजली का तार छू लेने पर मनुष्य जिस तरह कांपता हुआ हिलने लगता है, उसके छूने से सत्य नीचे से ऊपर तक उसी प्रकार कांप कर घबराने लगा। रमणी ने कहा,
मेरा नाम श्रीमती बिजली है, तुम्हारा नाम क्या है भाई? बाबू? ओ बाबू।
दीदी मुनि की दासी तो हंसी से भरकर एकदम मेज के ऊपर जा लेटी।
क्या रंग लाती हो दीदी मुनी।
नकली गुस्से से बिजली उसे धमकाती हुई बोली,
ठहर, बकबक मत कर, उठो ना, उठाओ ना।
कहकर जबरदस्ती सत्य को खींचकर एक चौकी के ऊपर बैठाकर उसके पांव के पास घुटने टिकाकर बैठ गई और हाथ जोड़कर गाना शुरू कर दिया। जिस आदमी ने शराब पी रखी थी उसने उठकर सत्य के पांव में दंडवत प्रणाम किया। नशे में रोता हुआ बोला,
पंडित जी महाराज, मैं बड़ा पापी हूँ, मुझे अपने चरणों की धूल दे दीजिए।
भाग्य की विडंबना से आज नदी पर नहाने के बाद सत्य कुछ धूल भरे कपड़े पहने हुए था। जो व्यक्ति हारमोनियम बजा रहा था वो थोड़ा बहुत होश में था। उसने सहानुभूति के स्वर में कहा,
अरे क्यों बेचारे का झूठ मूठ तमाशा बना रहे हो।
बिजली हंसती हंसती बोली,
वाह, झूठ मूठ कैसे, ये तो सचमुच का तमाशा है। अच्छा सिर फिरे बाबू, सच तो बता भाई, तू मुझे क्या समझता था। प्रतिदिन गंगा स्नान को जाती हूँ, कर्म से ब्राह्मण भी नहीं हूँ, मुसलमान क्रिस्तान भी नहीं हूँ, हिंदू घर की इतनी बड़ी उम्र की लड़की शादीशुदा हो सकती है या विधवा? किस मतलब से प्रेम करने चला था बोल तो, ब्याह करने के लिए या भुलावा देकर उड़ा ले जाने को।
एक भारी हंसी मच गई। उसके बाद सब लोग मिलकर कितनी ही बातें करने लगे। सत्य ने एक बार भी मुंह नहीं उठाया, किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वो मन में क्या सोच रहा था, उसे किस तरह कहा जाए, और कहने पर भी समझेगा कौन। खैर रहने दो। बिजली अचानक चौंक कर उठ खड़ी हुई और बोली,
वाह मैं भी खूब हूँ। ओ श्यामा जल्दी आ, बाबू के लिए खाना लेकर आ, स्नान करके आए हैं।
वाह मैं केवल तमाशा ही कर रही हूँ।
कहते कहते उसका थोड़ी देर पहले का व्यंग से जलता कंठ स्वर सचमुच ही ठंडा हो गया। थोड़ी देर बाद दासी ने खाने की एक थाली हाजिर कर दी। बिजली अपने हाथ में थाल लेकर बैठती हुई बोली,
मुंह उठाओ खाओ।
अब तक सत्य अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा कर स्वयं को संभाले हुए था। इस बार मुंह उठाकर शांत भाव से बोला,
मैं नहीं खाऊंगा।
क्यों, जाती चली जाएगी?
ऐसा नहीं है, आप जो कुछ हैं ठीक है।
हाय बाबू भी छुरा छुरी चलाना जानते हैं, देख रही हूं।
मेरा नाम सत्य है बाबू, नहीं मैंने छुरा छुरी चलाना कभी नहीं सीखा, पर अपनी भूल पहचान कर उसे सुधारना सीखा है।
बिजली अचानक न जाने क्या बात कहने जा रही थी पर उसे दबा कर बोली,
मेरा छुआ नहीं खाओगे?
नहीं।
बिजली उठ खड़ी हुई। उसके मजाक के स्वर में इस बार तीव्रता मिली हुई थी।
खाओगे, मैं कहे देती हूं तुमसे, आज न सही कल, पर तुम दो दिन बाद खाओगे।
सत्य गर्दन हिलाकर बोला, देखो भूल सभी से होती है, मेरी भूल कितनी बड़ी थी मैं खूब समझ गया हूं, आपसे भी भूल हो रही है, आज नहीं कल नहीं दो दिन बाद नहीं इस जन्म में नहीं आगामी जन्म में भी नहीं, किसी भी समय आपका छुआ नहीं खाऊंगा। आज्ञा दीजिए मैं जाऊं, आपकी सांस से मेरा खून सूखा जा रहा है।
उसके मुंह पर गंभीर नफरत की इतनी साफ परछाई पड़ी कि वहां बैठे शराबी की आंखों से भी ना छुप सकी। उसने सिर हिलाकर कहा,
बिजली बीबी जाने दो, जाने दो ना, सवेरे सवेरे इसने सारा मजा मिट्टी कर दिया।
बिजली ने जवाब नहीं दिया, सुन्न होकर सत्य के मुंह की ओर देखती हुई खड़ी रही। सच में उससे भयानक भूल हो गई थी, वो तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि ऐसा मुंह चोर व्यक्ति इस तरह भी बोल सकेगा। सत्य आसन छोड़कर उठ खड़ा हुआ, थोड़ा और बैठो ना। शराबी सुनते ही चिल्ला उठा,
अरे पहली झूठ में थोड़ा जोर दिखाएगा, जाने दो डोर ढीली करो, डोर ढीली करो।
सत्य कमरे के बाहर आ गया। बिजली ने पीछे से आकर राह रोकते हुए धीरे धीरे कहा,
वहां वे लोग देख लेते, पर मैं हाथ जोड़कर कहती हूं, मुझसे बड़ा अपराध हो गया है।
सत्य दूसरी ओर मुंह करके चुपचाप बना रहा।
ये बगल वाला कमरा मेरे पढ़ने लिखने का कमरा है, एक बार देखोगे नहीं? एक बार आओ ना, माफी चाहती हूं।
नहीं, कहकर सत्य सीढ़ियों की ओर बढ़ा। बिजली पीछे पीछे चलती हुई बोली,
कल मुलाकात होगी?
नहीं।
तो क्या कभी मुलाकात नहीं होगी?
नहीं। रुआंसी बिजली का कंठ भराया, थूक निगलकर जोर लगाकर गला साफ करती हुई बोली,
मुझे विश्वास नहीं होता कि फिर मुलाकात नहीं होगी, पर तो भी यदि ना भी हो तो बताओ, मेरी इस बात पर विश्वास करोगे?
उसका भरा हुआ गला सुनकर सत्य चकित हो गया, पर इन 15-16 दिनों में जो उसने अभिनय देखा है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। वो मुंह फेरकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे की हर लकीर पर मजबूत अविश्वास को पढ़कर बिजली की छाती फट गई, पर वो क्या करेगी? हाय हाय, विश्वास कराने के सभी उपाय उसने जैसे कूड़े करकट की भांति अपने ही हाथ से झाड़कर फेंक दिए थे। सत्य ने पूछा, क्या विश्वास करूं? बिजली के होंठ कांप उठे, पर स्वर नहीं निकला। आंसुओं से भारी दोनों आंखें क्षण भर के लिए ऊपर उठाकर नीचे कर ली। सत्य ने उन्हें भी देखा, पर आंसू क्या नकली नहीं होते? बिजली मुंह उठाए बिना भी समझ गई सत्य प्रतीक्षा कर रहा है, पर उस बात को वो किसी भी प्रकार मुंह से बाहर नहीं निकाल सकी, जो बाहर निकलने के लिए उसकी छाती के अंजर पंजरों को तोड़े फोड़े दे रही थी। वो प्यार करती थी, उस प्यार की बात को सार्थक करने के लिए वो इस रूप की भंडार देह का भी शायद एक फटे हुए कपड़े के टुकड़े की भांति त्याग कर सकती थी, पर कौन उसका विश्वास करेगा? वो तो दागी आसामी है, अपराधी के 100 करोड़ चिन्ह शरीर पर लगाए, सामने खड़ी होकर आज वो किस प्रकार मुंह पर लाए कि अपराध करना ही उसका पेशा अवश्य है, पर इस बार वो निर्दोष है। जितनी देर होने लगी उतना ही वो समझने लगी विचारक उसे फांसी का हुक्म देने बैठा है, परंतु किस तरह रोकेगी वो उसे? सत्य बेचैन हो उठा था, बोला, जा रहा हूं। बिजली तब भी मुंह नहीं उठा सकी, पर इस बार बोली,
जाओ, पर जिस बात पर अपराध में डूबी रहने पर भी मैं विश्वास करती हूं, उस बात का अविश्वास करके तुम अपराधी मत बनना। विश्वास करो, सभी के शरीर में भगवान वास करते हैं, जीवन रहने तक वो शरीर छोड़कर नहीं जाते। सभी मंदिरों में देवता की पूजा नहीं होती, तो भी वे देवता हैं, उन्हें देखकर चाहे सिर न झुक सके पर उन्हें ठुकरा कर भी नहीं जाया जा सकता।
स्वभाव के विरुद्ध विद्रोह किया जा सकता है, पर उसे बदला तो नहीं जा सकता। नारी शरीर पर सैकड़ों अत्याचार चल सकते हैं, परंतु नारीत्व को अस्वीकार करने से नहीं चलेगा। बिजली नर्तकी है, पर वो नारी भी है। जीवन भर हजारों अपराधों की अपराधिनी रही, तो भी उसकी ये देह नारी देह ही तो है। घंटे भर बाद जब वो कमरे में लौट कर आई, उस समय उसकी कलंकित अधमरी नारी प्रकृति अमृत के स्पर्श से जगकर उठ बैठी थी। इस अत्यंत थोड़े से समय के भीतर ही उसके संपूर्ण शरीर में न जाने कैसा अद्भुत परिवर्तन हो गया था, उसे शराबी तक खूब समझ गया। वो कह बैठा,
क्यों बिजली, आंखों की पलके तो भीगी हुई हैं। भैया रे, लौंडा भी एक ही जिद्दी था, ऐसी वस्तुएं भी मुंह में नहीं डाली। अरे दो दो थाली जरा आगे तो बढ़ा रे,
कहकर स्वयं ही थाली खींचकर खाने लगा। उसकी एक भी बात बिजली के कानों में नहीं पड़ी। अचानक उसके पांव में बंधे घुंघरुओं ने जैसे बिच्छुओं की भांति उसके दोनों पांव में डंक मार दिया। उसने झटपट उन्हें खोलकर फेंक दिया।
खोल भी दिए?
अभी ने नहीं पहनूंगी।
मतलब?
मतलब अब कभी नहीं। बाई जी मर गई, शराबी सौंदेश चबाता हुआ बोला।
किस रोग से बाई जी?
जिस रोग से दीपक जलने पर अंधेरा मर जाता है, सूरज निकलने पर रात मर जाती है, आज उसी रोग से तुम लोगों की बाई जी हमेशा के लिए मर गई। भाई, 4 वर्ष बाद की बात है। कलकत्ता की एक बड़ी हवेली में जमींदार के लड़के का अन्नप्राशन है। खाने पीने का विशाल आयोजन समाप्त हो चुका है। शाम के बाद बाहर वाले मकान में रोशनी से जगमगाते आंगन में महफिल में नृत्य गायन का आयोजन चल रहा है। एक ओर 3-4 नाचने वालियां हैं, यही नृत्य गायन करेंगी। दूसरी मंजिल के बरामदे में चिक की आड़ में बैठी राधा रानी अकेले नीचे के आयोजन को देख रही थी। जिन महिलाओं को न्योता गया था उनका अभी आना नहीं हुआ था। चुपचाप पीछे से आकर सत्येंद्र ने कहा,
इतना मन लगाकर क्या देख रही हो, बताओ तो।
राधा रानी मुड़कर मुस्कुराती हुई बोली, जिन्हें सब लोग देखने आए हैं बाई जी की साज सज्जा, पर तुम अचानक यहाँ?
अकेली बैठी हो, इसी से एक बात कहने आया हूँ।
ऐसा?
सचमुच? अच्छा, देख रही हो तो बताओ तो, उन सब में तुम्हें सबसे अधिक कौन पसंद है?
वो इधर वाली, कहकर राधा रानी ने उंगली उठाकर जो नर्तकी सबसे पीछे अत्यंत सीधी सादी पोशाक पहने बैठी थी उसे दिखा दिया।
वो तो बहुत दुबली है।
सो भले ही हो, यही सबसे अधिक सुंदरी है, परंतु बेचारी गरीब है ना। देखो, शरीर में गहने वहने इन सब की तरह नहीं है।
ये होगा, परंतु इन सब की मजदूरी कितनी है जानती हो?
नहीं,
सत्येंद्र ने हाथ से दिखाते हुए कहा, ये 30-30 रुपए की है, और जिसे गरीब कहती हो उसके 200 रुपए।
200? क्यों, क्या वो बहुत अच्छा गाती है?
कान से कभी नहीं सुना। लोग कहते हैं 4-5 साल पहले बहुत अच्छा गाती थी, परंतु अब गा सकेगी या नहीं कहा नहीं जा सकता।
तब इतने रुपए देकर क्यों लाए?
इससे कम पर वो नहीं आती, इतने पर भी आने को राजी नहीं थी, बहुत मना मनु कर लाई गई।
राधा रानी ने और भी चकित होकर पूछा, रुपए देकर भी मनाना मनुना क्यों?
सत्येंद्र पास ही एक चौकी खींचकर बैठता हुआ बोला, उसका पहला कारण उसने व्यवसाय छोड़ दिया है। गुण उसका कितना भी हो, इतना रुपया कोई सहज ही देना भी नहीं चाहता, उसका भी आना नहीं होता, ये उसकी बात है। दूसरा कारण मेरी अपनी ही गरज है।
इस बात पर राधा रानी ने विश्वास नहीं किया, तो भी आग्रह से आगे खिसक कर बैठती हुई बोली, तुम्हारी गरज लाख होगी, पर व्यवसाय क्यों छोड़ दिया?
सुनोगी?
हाँ बोलो।
उसका नाम बिजली है, बताता पर यहाँ पर लोग आ जाएंगे। रानी, अंदर चलोगी?
चलूंगी, चलो। पति के पास बैठकर सब कुछ सुनकर राधा रानी ने आंचल से आंखें पोंछ ली। अंत में बोली,
इसी से आज उसका अपमान करके बदला लोगे? ये बुद्धि तुम्हें किसने दी?
इधर सत्येंद्र की आंखें भी सूखी नहीं थी, बहुत बार गला भी भराया था,
बोला, अपमान अवश्य है, पर इस अपमान को हम तीनों के अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकेगा।
राधा रानी ने जवाब नहीं दिया, एक बार फिर आंचल से आंखें पोंछकर बाहर चली गई। निमंत्रित भद्र पुरुषों से महफिल भर गई थी और ऊपर बरामदे में बहुत सी स्त्रियों के बातें करने की आवाजें चिक को भेदती हुई आ रही थीं। अन्य नर्तकियां तैयार हो चुकी थीं, केवल बिजली उस समय भी सिर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखों से पानी गिर रहा था। लंबे 5 सालों में उसका जोड़ा हुआ सारा पैसा समाप्त हो चुका था। उसी के अभाव में मजबूर होकर आई थी, जिसे उसने शपथ करके त्याग दिया था, पर वो मुंह उठाकर खड़ी नहीं हो पा रही थी। अनजाने पुरुषों की प्यासी निगाहों के सम्मुख शरीर जैसे पत्थर की भांति भारी हो जाएगा
पांव इस तरह दोहरे होकर टूट पड़ना चाहेंगे, इसकी वो 2 घंटे पहले कल्पना तक नहीं कर सकी थी।
आपको बुला रही है, बिजली ने मुंह उठाकर देखा।
पास ही खड़ा हुआ है एक 12-13 वर्ष का लड़का। उसने ऊपर के बरामदे की ओर उंगली दिखाते हुए दोबारा कहा,
माँ जी आपको बुला रही हैं।
बिजली विश्वास नहीं कर पाई।
कौन बुला रही हैं?
माँ जी बुला रही हैं।
तुम कौन हो?
मैं घर का नौकर हूं।
बिजली गर्दन हिलाकर बोली,
मुझे नहीं, तुम फिर पूछ कर आओ।
बालक थोड़ी देर बाद लौट कर बोला,
आपका नाम बिजली है ना, आप ही को बुला रही हैं। आइए मेरे साथ, माँ जी खड़ी हुई हैं।
झटपट पांव के घुंघरू खोलकर बिजली उसका पीछा करती हुई घर के अंदर चली गई। मन में सोचा, गृहिणी की कोई विशेष फरमाइश है, इसलिए वहां बुलाया गया है। भीतर के कमरे के दरवाजे के पास राधा रानी बालक को गोद में लिए खड़ी हुई थी। बिजली के सामने खड़े होते ही वो आदर पूर्वक हाथ पकड़कर उसे खींचकर भीतर लाई। एक चौकी के ऊपर जबरदस्ती बैठाकर मुस्कुराती हुई बोली,
दीदी पहचानती हो?
बिजली आश्चर्यचकित हो रही थी। राधा रानी गोद के लड़के को दिखाती हुई बोली,
छोटी बहन को शायद पहचाना नहीं दीदी, इसका दुख नहीं है, पर इसको ना पहचान पाने पर सचमुच ही झगड़ा करूंगी,
कहकर मुंह दबाकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। ऐसी हंसी देखकर भी बिजली कोई बात ना कह सकी, पर उसका अंधियारा आकाश धीरे धीरे साफ होने लगा। इस सुंदर गुलाब के फूल जैसे खिले हुए शिशु के मुख की ओर उसकी आंखें बंधी रह गईं। राधा रानी की सांसें रुकी हुई थीं। बिजली सूखी हुई आंखों से देख देख कर अचानक उठ खड़ी हुई, दोनों हाथ फैलाकर शिशु को गोद में लेकर जोर से छाती से चिपटाकर झर झर करती हुई रो पड़ी। राधा रानी ने कहा,
दीदी समुद्र को मत कर, विष तो स्वयं पी लिया और सारा अमृत इस छोटी बहन को दे दिया है। उन्होंने तुमसे प्यार किया था, इसीलिए मैंने उन्हें पाया है।
सत्येंद्र के एक छोटे से फोटोग्राफ को हाथ में उठाए बिजली टकटकी बांधे देख रही थी। मुंह उठाकर मुस्कुराती हुई बोली,
विष का विष ही तो अमृत है बहन, मैं वंचित नहीं रही, उसी विष ने इस घोर पापिनी को ऊपर कर दिया है।
राधा रानी ने इस बात का उत्तर न देते हुए कहा,
मुलाकात करोगी दीदी?
बिजली पल भर आंखें बंद करके निश्चय करती हुई बोली,
नहीं दीदी, 4 वर्ष पहले जिस दिन वे इस अछूत को पहचान कर घोर घृणा से मुंह फेर कर चले गए थे, उस दिन घमंड में भरकर मैंने कहा था, फिर मुलाकात होगी, तुम फिर आओगे, परंतु मेरा वो घमंड रहा नहीं और वे आए नहीं। पर आज देख रही हूं क्यों ऊपर वाले ने मेरा वो घमंड नष्ट कर दिया। मन की आग में जलते हुए भगवान को निर्दय निष्ठुर कहकर अनेकों दोष दिए हैं, पर अब देख रही हूं इस पापिन पर उन्होंने कैसी दया की है। उस दिन उन्हें लौटा कर ले जाती तो मैं सब ओर से मिट्टी हो जाती, उन्हें भी नहीं पाती, स्वयं को भी हार जाती।
रोते रोते राधा रानी का गला भर आया था, वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। बिजली ने फिर कहा,
सोचा था कभी मुलाकात होने पर उनके पांव पकड़कर एक बार और माफी मांग कर देखूंगी, परंतु अब उसकी जरूरत नहीं है। इस चित्र को केवल दे दो दीदी, मैं जा रही हूं।
राधा रानी ने भारी स्वर से पूछा,
फिर कब भेंट होगी दीदी?
भेंट अब नहीं होगी बहन, मेरा एक छोटा सा मकान है, उसे बेचकर जितनी जल्दी हो सकेगा चली जाऊंगी।
क्या तुम मुझे बता सकती हो बहन कि उन्होंने अचानक इतने दिन बाद मुझे याद किया? जब उनका आदमी मुझे बुलाने आया था तब तो कोई एक झूठा नाम बताया था।
लज्जा से राधा रानी का मुंह लाल हो उठा, वो नीचा मुंह किए चुप रह गई। बिजली क्षण भर सोचकर बोली,
समझ गई, शायद मेरा अपमान करने के लिए ही ना, नहीं इसके अतिरिक्त इतनी चेष्टा करके मुझे बुलवाने का तो कोई अन्य कारण नहीं दिखाई देता।
राधा रानी का सिर और भी झुक गया। बिजली हंसकर बोली, तुम क्यों लजाती हो बहन?
तो भी उनसे भूल हो गई। उनके चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम कहकर बता देना, ये नहीं हो सकता। मेरा अपना अब कुछ भी नहीं है। अपमान करने पर संपूर्ण पाप उन्हीं के शरीर से लगेगा।
नमस्कार दीदी।
नमस्कार बहन। आयु में बहुत बड़ी होने पर भी तुम्हें आशीर्वाद देने का अधिकार तो मुझे नहीं है। मैं तन मन से प्रार्थना करती हूँ तुम्हारा संसार हमेशा भरा पूरा रहे। जा रही हूँ।
आप सुन रहे थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखी मूल बांग्ला कहानी का हिंदी अनुवाद अंधेरे में उजाला। वाचन था निधि बासु का।
आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपके कमेंट्स या फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। तो सुनते रहिए किस्सा कहानी बाय निधि बासु केवल स्पॉटिफाई पर, और फॉलो बटन दबा के पॉडकास्ट फॉलो करना न भूलें।